গোপী জন বল্লভ জয় গিরি ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक दृष्टिकोण से जो प्राणी, प्राणियों में एक ऐसा गुण होता है कि उन्हें यदि कोई कुछ सिखा दे तो वो प्राणी उसी प्रकार से उसे दोहराते रहते हैं। सर्कस में आपने देखा होगा कि सर्कस में शेर को भी पाला जा सकता है और पालतू बनाकर शेर से भी नम्र कार्य किए जा सकते हैं या कराए जा सकते हैं। शेर, हाथी, ये सभी सर्कस के भी प्राणी हैं, परंतु मनुष्य को कोई इस प्रकार से पालतू नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक तो बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है और इतनी सूक्ष्म है, और बुद्धि के साथ जो स्वेच्छा है साथ नहीं देता। उसे यदि यहां से वहां जाना है तो उसको सहारा लेना पड़ता है माता पिता का। यदि उसे कुछ खाना है तो कोई आकर उसे खिलाना होता है। यदि उसे सोना है, नहाना है, धोना है, जो कुछ उसे करना है, उसका शरीर उस समय सीमित है, इसलिए वो ये सब कार्य नहीं ठीक से कर पाता। और वही बालक ये सब कार्य अपने आप करना शुरू करता है कब? जब उसका शरीर विकसित होता है। तो शरीर विकसित होने के कारण उसकी जो स्वेच्छा है वो भी विकसित दिखती है कि अब वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ये सारी जो उसकी इच्छाओं का प्रकटीकरण दिखता है उसके शरीर और इंद्रियों के द्वारा। और वही जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तो फिर से उसकी स्थिति वैसी हो जाती है। फिर से उसकी स्थिति जब वो छोटा सा बालक शिशु था उसी के समान उसकी स्थिति हो जाती है कि अब उसे खाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो आकर खिलाए, उसे खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए, स्नान कराने के लिए, ये सब कार्यों के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो जो प्राणी होते हैं उनका शरीर भी बहुत सीमित होता है और वो केवल कुछ एक इंद्रियां प्राणियों की विकसित होती है प्रकृति द्वारा। जैसे कि कोई हिरण है तो हिरण के अंदर शारीरिक बल इतना नहीं है, परंतु उसके अंदर अपने आप को बचाने के लिए भगवान ने क्या दे दिया? चपलता, चुस्ती, फुर्ती, ये सब कुछ उस हिरण में प्रकृति ने दे दिया। तो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हिरण को वो शेर मार के खाएगा और शेर के अंदर चुस्ती फुर्ती दी है, उसके साथ शक्ति भी दी है, परंतु उसका शरीर हिरण से भारी है। तो यहां पर मेल देखिए कि शेर का शरीर शक्तिशाली है परंतु हिरण से भारी है, और हिरण का शरीर शक्तिशाली इतना नहीं शेर की तुलना में परंतु हल्का, और उसके कारण वो अपने आप को बचा सकता है। तो यदि हम इन प्राणियों के शरीर को देखें तो प्रकृति ने इन प्राणियों के शरीर को केवल किसी एक कार्य को सिद्ध करने के लिए बनाया है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार कार्य सिद्ध करने के लिए ये प्राणियों के शरीर होते हैं। और इन चार कार्यों को भी सिद्ध करने के लिए बहुत विकसित नहीं होती उनकी इंद्रियां, और इसलिए उनकी जो स्वेच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उनके शरीर के कारण बाधित रहती है। तो यहां पर यदि हम तुलना करें कि श्रील प्रभुपाद ने जिन हिप्पियों को भक्त बनाया वो ज्यादा कठिन था, इन प्राणियों को भक्त बनाने से हम ये कह सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आते। एक व्यक्ति था जिसने वो कई महीने और पता नहीं वो कई महीने कुछ साल में भी परिणित हो गए होंगे, उसने स्नान नहीं किया और दूर से ही जब कोई व्यक्ति उसे देख लेता तो बदबू उसके शरीर से, दुर्गंध, और उसे कोई दूर से देखता तो घिन के कारण दूर भाग जाता, और वो आकर श्रील प्रभुपाद के चरण को स्पर्श करता और सभी भक्त वो उनका मन इतना खराब हो जाता जब वो देखते कि ये व्यक्ति इतना, एक तो श्रील प्रभुपाद वो आध्यात्मिक संसार से आए हुए शुद्ध वैष्णव जिन्होंने चार नियमों का पालन किया बचपन से एक वैष्णव परिवार में, परंतु श्रील प्रभुपाद वो कभी मना नहीं करते, बल्कि यदि कोई रोकने आता उसे तो उसे मना करते श्रील प्रभुपाद। और ये आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना ये हिप्पी। एक घटना ऐसी हुई कि एक बार श्रील प्रभुपाद वो बैठे हुए थे और एक बिल्ली श्रील प्रभुपाद के चरणों के निकट आई और वो श्रील प्रभुपाद के चरणों को चाटने लगी। अब सोचे बिल्ली आकर श्रील प्रभुपाद के चरणों को चाट रही है तो सभी भक्त दूर करना चाहते थे उस बिल्ली को, तो प्रभुपाद ने सबको रोक दिया और वो बिल्ली श्रील प्रभुपाद के चरण स्पर्श करने के पश्चात, चाटने के पश्चात, दो दिन पश्चात उसने श्रील प्रभुपाद की एक प्रदक्षिणा भी की, एक प्रदक्षिणा की और उसके दो दिन पश्चात प्राण छोड़ दिया उसने। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है वो इतनी सरल होने के वजह से कई बार हम उसे अपनाते नहीं। ये बहुत सरल है। तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं भगवान हैं और वो कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं, परंतु ये कभी कहीं पर पढ़ा या सुना नहीं था कि वो ऐसे प्राणियों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में मदमत्त कर देंगे। ये अब अपनी आंखों से वो देख रहे थे। तो हमने कल चर्चा की कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने वो शेर और वो हाथी इन दोनों को हरि नाम में नचाना शुरू किया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सेई जल बिंदु कण लागे यार गाए, सेई कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाए। हाथी उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के हाथों से स्पर्श हुआ जल, जब हाथियों ने स्पर्श किया तो कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेमे नाचे गाए, वो नाचने लगे। और ऐसा नहीं कि वो केवल जैसे कोई सर्कस में हाथी नाचता है वैसे नाचने लगे, प्रेम में। यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेम में नाचने लगे। तो हमें कब समझ में आएगा कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्पर्श किए हैं, जैसे इन हाथियों ने स्पर्श किया, कि जब हम भी हरे कृष्ण महामंत्र में जब नृत्य करेंगे तो वो प्रेम से करेंगे, न कि कोई शारीरिक व्यायाम या दूसरों को दिखाने हेतु या दूसरे कुछ मेरे बारे में बुरा न कहें इसलिए नाचो, नहीं तो बोलेंगे कि नाचते नहीं। तो बहुत से कारण हैं जिसके वजह से हम नृत्य करते हैं कीर्तन में, परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु उन्होंने दिखा दिया इन हाथियों के उदाहरण द्वारा कि नृत्य किस कारण के वजह से होना चाहिए। अब देखिए, इस भौतिक संसार में लोग नाचते हैं तो क्या कारण है नाचने का? कोई ऐसा ही तो पागल जैसे उठकर थोड़ी नाचने लगेगा रास्ते में। लोग किसी पार्टी में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो नाचते हैं ना। तो किसी की शादी में क्यों नाचता है कोई? खुश हो रहा है। क्या खुशी है? कि एक और शामिल हो गया हमारे क्लब में। और आजकल तो लोग केवल वो पैसे मिलते हैं नाचने के लिए, इसलिए लोग नाचते हैं कि वो 10 का नोट 50 का नोट ऐसे घुमा के देते हैं ना। तो देखा नाचते हुए, जब उसने देखा कि 10 का है 50 का है कौन सा है, उस हिसाब से और जोर जोर से नाचना शुरू करता है। वो जैसे ट्रेनों में वो भिखारी गीत गाया करते हैं, तो उसमें वो गीत गाते हैं ये नहीं कि मनोरंजन करने हेतु, सभी ट्रेन में बोर हो रहे हैं तो उनकी सेवा हेतु चलो आकर कुछ गीत गाएं। वो गीत गाते हैं, वो कटोरा होता है उनके जो हारमोनियम से लगा हुआ कटोरा होता है, और उसे ज्यादा हिलाते हैं वो कि देखो इसमें खाली 1-2 चिल्लर है और डालो थोड़ा। तो जैसे चिल्लर बढ़ते जाते हैं उसमें, वैसे उनके गीत और बढ़ते जाते हैं। तो इस भौतिक संसार में ये सारे भौतिक कारण हैं जिनके वजह से लोग अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इन हाथियों के द्वारा सिखा रहे हैं, श्री कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाए, कि कृष्ण कहते हुए कृष्ण प्रेम में वो नाचना प्रारंभ किए हाथी। और इतना ही नहीं, केह भूमि पड़े केह करय चित्कार, देखी भट्टाचार्येर मने हय चमत्कार। कि ये केवल श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य प्राणियों ने नहीं देखा, बल्कि ये बलभद्र भट्टाचार्य। तो कोई ये कह सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं मदमत्त थे, तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु को इन हाथियों ने देखा इस प्रकार से तो वो नाचने गाने लगे। परंतु यहां पर बलभद्र भट्टाचार्य वो श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव में नहीं थे, परंतु बलभद्र भट्टाचार्य वो पहचान गए कि ये हाथियों का कोई पागल नृत्य नहीं है, कोई पागलपन के द्वारा नृत्य नहीं कर रहे, ये एक चमत्कार है। तो ये हाथी गिरने लगे, चित्कार करने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य वो आश्चर्यचकित हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु अब तुरंत सरोवर से निकलकर वो चलना शुरू करे। पथे आयते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगी गण। कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो चल रहे थे झारखंड के जंगल से, तो अब उन्होंने देखा कि ये दो प्राणी शुरू किए हैं कीर्तन करना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर में संकीर्तन करने लगे। पथे याइते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च संकीर्तन करने लगे उच्च स्वर में, और उच्च स्वर में संकीर्तन इसलिए करने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी मदमस्त अवस्था में भी वो अपनी बुद्धि लगा रहे थे कि ऐसे बहुत से प्राणी होंगे जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा। शेर और हाथी तो बड़े बड़े हैं, हर कोई देख लेगा इन्हें, परंतु ऐसे बहुत से प्राणी होंगे इस जंगल में जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा। तो उन्होंने सोचा कि उनका उद्धार तभी हो पाएगा जब मैं उच्च स्वर में कीर्तन करूंगा। इसलिए एक ऐसा प्रसंग हुआ जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि ठाकुर महाशय बताओ कि ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार क्या शुद्ध हो पाएगा, क्या ये सब वैष्णव बन पाएंगे, क्या ये संभव है, और क्या इस पूरे संसार में जो इतने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों में, क्या उनका उद्धार हो पाएगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं अवश्य अवश्य इन सब का उद्धार होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कैसे, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं इस हरिनाम संकीर्तन द्वारा। और ये हरिनाम संकीर्तन जब उच्च स्वर में आप करते हैं, तो उच्च स्वर में किया गया हरिनाम संकीर्तन इन सभी प्राणियों का उद्धार कर देगा। और जब ये शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से सुनी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिन से उच्च स्वर में संकीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस आशा से कि बहुत से ऐसे प्राणी जीव होंगे, बहुत से कीड़े, बहुत से मच्छर मक्खी, बहुत से पक्षी जो दिखाई नहीं दे रहे, यहां तक कि सांप, बहुत से ऐसे भी जहरीले प्राणी होंगे, इन सब का उद्धार चैतन्य महाप्रभु जोर से उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन लेकर कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद के एक निजी सेवक वो एक बार बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में संध्या के समय अकेले जप कर रहे थे और सूर्यास्त का समय था और सूर्य की किरणें बहुत ही सुंदर दिख रही थी जब वो श्रील प्रभुपाद के ऊपर पड़ रही थी। तो इन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद वो आगे झुके हुए जप कर रहे हैं, तो ये अंदर आकर देखना चाह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद क्या अपना जप किसी के साथ बैठकर कर रहे हैं, ये आगे क्यों झुके हुए हैं। तो थोड़ा वो और अंदर आया, उन्होंने देखा श्रील प्रभुपाद एक छोटा सा एक कीड़ा सा था वो जमीन पर रेंग रहा था, तो श्रील प्रभुपाद उसके निकट जाकर यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कहीं पर उसका जो भी कान था उसके कानों में श्रील प्रभुपाद ये हरे कृष्ण की ध्वनि डाल रहे थे। तो सोचिए कि वो कीड़े का सौभाग्य क्या। तो निजी सेवक वो सोच रहे थे कि ये भाग्य है इस कीड़े का कि श्रील प्रभुपाद वो स्वयं व्यक्तिगत एक शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वो स्वयं इस कीड़े के कान में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि डाल रहे। तो वो उनका साक्षात्कार यह था कि यदि मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा पूरे जीवन भर शुद्ध तरीके से करूं तो हो सकता है अगले जन्म में या कई अगले जन्मों में मेरा सौभाग्य ऐसा हो कि मैं उस कीड़े के समान हूं, वो कीड़े की योनि में मैं जाऊं और श्रील प्रभुपाद के मुख से निकला हुआ हरे कृष्ण महामंत्र मैं सुनूं। कई बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहा करते थे कि कुछ ऐसे प्राणी उनके लिए कीर्तन करो, जप करो। एक बार श्रील प्रभुपाद के कमरे में एक चिलचट्टा, जानते हैं चिलचट्टा, हाँ, कॉकरोच, तो एक कॉकरोच घूम रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने उस कॉकरोच को हाथ में लिया। सोची और खिड़की खोली और श्रील प्रभुपाद ने कहा, आई गिव यू द एंटायर वर्ल्ड टू एंजॉय, कि मैं तुम्हें ये सारा संसार देता हूं आनंदित होने के लिए। और ऐसे करते हुए उस चिलचट्टे को छोड़ दिया। तो जयप्रताप महाराज वो कमरे में थे तो उनका साक्षात्कार था कि हम सब उस चिलचट्टे के समान हैं और श्रील प्रभुपाद ने हमें उठाया है, परंतु यदि श्रील प्रभुपाद हमें छोड़ देंगे तो हमारा कोई सहारा नहीं संसार में। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए कि श्रील प्रभुपाद हमें छोड़ दें इस प्रकार से, कि हम केवल श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में एक सहायक के रूप में रहें, ताकि एक सहायक के रूप में श्रील प्रभुपाद हमें इस्तेमाल करें ये हरिनाम को बांटने में। तो उच्च स्वर में जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे और मधुर कंठ ध्वनि, सोचिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कंठ ध्वनि कैसी होगी। गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गौरा मधुर स्वरे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे तो केवल ये प्राणी ही नहीं भाव विभोर होकर, बल्कि आगे इस लीला में बताया गया है कि स्थावर जंगम दोनों, जड़ चेतन दोनों भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु के मधुर कंठ की ध्वनि सुनकर वो भाव विभोर अवस्था में नृत्य और कीर्तन करना प्रारंभ किए। तो यहां पर मृगगणी कि जो मृगगण, मृगगण का अर्थ है ये हिरण, इन्होंने जब सुना, और हिरणों की एक विशेषता है कि जो हिरण होते हैं वो बहुत अच्छी ध्वनि सुनने के वशीभूत होते हैं और ये मारे जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये जो हिरण, इसका वध होता है कब? जब वो शिकारी की सुंदर मुरली को सुनता है और खड़े हो जाता है एक जगह पर, और शिकारी जब तीर मारता है तो वो हिरण जानता है बचा सकता है तब भी अपने आप को, परंतु वो वशीभूत है उस मधुर ध्वनि को सुनने में, तो वो हिरण वहां से हिलता नहीं। तो सोचिए कि एक साधारण सा शिकारी जब मुरली बजाकर हिरण को रोक सकता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और ये इनका एक नाम क्या है, मुरलीधर, ये स्वयं जो स्रोत हैं सभी मुरलीधरों के, जो भी इस भौतिक संसार में मुरली को धारण किए हैं और मुरली बजाते हैं, प्रयास करते हैं, उन सब के स्रोत हैं, ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु जब इतने मधुर कंठ से कीर्तन कर रहे थे, तो ये मृग रुक गए। सुनी ऐसे मृगी गण कि जैसे ही उन्होंने सुना तो उनके कान खड़े हुए और वो खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, दाहिने वामे ध्वनि सुनी या प्रभु संगे, प्रभु तार अंग मुझे श्लोक पड़े रंगे। कि ये मृग श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों ओर चलना शुरू किए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कि ये कोई निजी पहरेदार हो, सिक्योरिटी गार्ड होते ना बड़े बड़े नेताओं के, उनके निकट बंदूक ले लेकर घूमते रहते हैं वो लोग। कलयुग में तो वही उसे मार देते हैं, बंदूक लेकर घूम रहे हैं, उनके पहरेदारी कर रहे हैं और उन्हीं को मार देते हैं। तो ये मृग चैतन्य महाप्रभु के दोनों तरफ, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, ये दोनों मृग, और एक नहीं झुंड, कई मृग वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लगे। तो आजकल कलयुग में जो अपने आप को भगवान कहते हैं, और कई ऐसे हैं जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कि हम वो चैतन्य महाप्रभु के दूसरे अवतार हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद वो आए। तो ठीक है, उन्हें कहो थोड़ा हरे कृष्ण उच्च स्वर में संकीर्तन करो, देखते हैं कौन पीछे पीछे जाता है आपके, मक्खी मच्छर को छोड़कर। तो ये मृग गण ये चैतन्य महाप्रभु के दाएं और बाएं ओर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इस दृश्य को देखा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक याद आया, धन्यास्म मूर्ध मतयोपि हरिण्येता, यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुम रणितम सह कृष्ण सारा, पूजम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने उच्चारण किया। चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोक याद आया, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में विचरण करते हैं तो उनके साथ क्या अनुभव होता है, श्लोक में बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में विचरण करते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि बछड़े, हिरण, हंस, अन्य पक्षी, ये सब भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से इतने आकर्षित, धन्य स्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु इन हरिणों को कह रहे हैं कि धन्य है ये हरिण। क्यों धन्य है? क्योंकि ये मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ क्या है? मूर्ख। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये धन्य है ये हरिण जो मूढ़ है, मूर्ख है। अब कोई यदि मूढ़ और मूर्ख हो तो धन्य कैसे हुआ, कैसे समझोगे आप? कि क्या ये आशीर्वाद है, क्या ये गुणगान है इनका, या कोई श्राप, क्या है ये, कैसे धन्य है ये हरिण, मूढ़ चैतन्य महाप्रभु ने कह रहे, इनकी धन्यता और इनकी मूढ़ता इनमें क्या संबंध है। यदि कोई जगह है तो बोल सकता है। कोई सोचे समझे बिना वो भगवान से आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई एक मूढ़ व्यक्ति ही ऐसे कर पाएगा, ये अर्थ है। या यदि उन हरिणों में बुद्धि होती मनुष्य की तरह तो वो पीछे नहीं जाते इस प्रकार से। कई बार देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत विद्वत्ता हासिल कर लेता है तो वो भक्ति के जो साधारण से अंग हैं वो ठीक से पालन नहीं कर पाता। वो कीर्तन में दिल खोल कर नृत्य नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। और विशेष रूप से जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, क्या ये भावुक लोगों की तरह नृत्य करूं मैं। तो कई बार ये जो विद्वत्ता है, बहुत बार अक्सर ये जो विद्वत्ता है ये आड़े आ जाती है, भक्ति के कार्य को सुगमता से करने के में आड़े आती है ये विद्वत्ता। इसलिए तो कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिभिर एद मान मध पुमान, कि हे भगवान ये शत्रु हैं एक भक्त के, ये विद्वत्ता, ये ऊंचे कुल में जन्म, ये सुंदरता, ऐश्वर्य, पैसा, ये सब कुछ अवरोध है आपकी भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु इन्हें देखते हुए, जैसे कि हमने पिछले साल भी चर्चा की, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब निकले तो उन्होंने वो अनपढ़ ब्राह्मण, उस अनपढ़ व्यक्ति को जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने, कि वो अनपढ़ गवार परंतु भगवत गीता हाथ में लिए और सभी उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये देखो अनपढ़ गवार अंगूठा छाप और वो भी गीता पढ़ रहा है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो अश्रु प्रवाहित करते हुए भाव विभोर अवस्था में गीता पढ़ रहा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर उससे कहते हैं कि तुम धन्य हो कि तुमने गीता का सार और मर्म जान लिया है। और वो रो क्यों रहा था वो अनपढ़ ब्राह्मण, यही देखते हुए उसने गीता खोली भी नहीं, केवल गीता के ऊपर वो देख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण रथ हांक रहे हैं अपने भक्त का, बस यही सोचते हुए उसकी आंखें अश्रु से भरी हुई। तो एक तो वो अनपढ़, उसके ऊपर आंखें अश्रु से भरी हुई, गीता खोला नहीं तो क्या दिखेगा उसे गीता के अंदर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इसे देखा तो कहा कि तुमने जो गीता जिसने सुनाई, जिसको सुनाई, जिसके लिए सुनाई, ये सब का मर्म तुमने जान लिया और तुम्हें कृपा प्राप्त हुई है भगवत गीता की और उन भगवान की जिन्होंने गीत सुनाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर हरिणों को मूढ़ कह रहे, धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता, क्यों, क्योंकि यानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम, कि वो जो नंद नंदन है भगवान श्री कृष्ण, जब ये हरिण ब्रजभूमि में जब वो नंद नंदन को देखते हैं तो देखते सो ये हरिण इतना आकृष्ट होते हैं भगवान से कि हरिण भगवान का संग छोड़ना नहीं चाहते। और वो भगवान जो विचित्र वेशम, उन्होंने बहुत ही विचित्र वेश धारण किया है, जिन्होंने जंगल के कुछ पत्थर, वनमाला, मोर पंख और जंगली कुछ फूल, इनसे अपने आप को सजाया हुआ है। तो ये हरिण भगवान की इस सुंदरता को देखकर वो भगवान के ही तरफ भागते हुए उनके ही तरफ मंडरा रहे हैं। आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सार। और हिरण विशेष रूप से वो वेणु की जो ध्वनि है उसके प्रति बहुत आकृष्ट रहते हैं। तो हमने वही चर्चा की और चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को याद कर रहे हैं कि जब वो कृष्ण वेणु बजाते हैं तब ये हरिण वो अपने आप में नहीं रह सकते कि सबसे पहले तो इतनी सुंदरता भगवान की, उसके ऊपर जब वो मुरली बजाना शुरू करते हैं तो ये हरिण पहले तो पागल, मूड और पागल हो जाते हैं। और बहुत ही विशेष मुद्दा यहां पर श्लोक में कहा गया है, पूजाम दधूर विरचिताम प्रणया अवलोकई, कि ये हरिण पूजा करना शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। सोचो हिरण पूजा कैसे करेगा। हम देखते हैं कि भगवान के अर्च्य विग्रह की पूजा कोई पुजारी कैसे करता है, आरती की प्लेट बनाता है, भोग की प्लेट बनाता है, उनका श्रृंगार करता है, उनके लिए गीत प्रार्थनाएं गाता है, इस प्रकार से अर्च्य विग्रह की पूजा होती है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु श्लोक में कह रहे हैं पूजाम विरचिताम प्रणय अवलोकई, कि वो पूजा कर रहे हैं हरिण भगवान श्री कृष्ण की। कैसे पूजा कर रहे हैं, अवलोकई प्रणय, केवल अपने आंखों से, प्रीति से, प्रणय से, जब वो अपनी आंखों से दृष्टिपात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी तरफ, तो केवल आंखों से स्नेह पूर्वक देखने मात्र से उनकी पूजा हो रही। सोचिए इससे सरल और कौन सा मार्ग हो सकता है कि भगवान की पूजा कोई देखते सो कर सकता है, कि कोई भगवान को देख रहा है और भगवान की पूजा हो रही है उसके अंदर। इससे इसलिए कम से कम आंखें तो खुली रखनी चाहिए हमें, इतना ही पूछा गया है कि केवल आंखें खुली रखो, वो भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो सोचिए हमारी स्थिति क्या है, वो आंखें भी खुली नहीं रहती, वो भी बंद होती, और वो भी आज के सुंदर पर्व पर। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु इन हरिणों को देखते हुए इस श्लोक को याद कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी यही हरिण भगवान को देखने मात्र से उनकी पूजा कर रहे थे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु वो जब उच्च स्वर में संकीर्तन करते हुए झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे, हिन काले व्याघ्र तथा अयल पंच सात, व्याघ्र मृगी मिले चले महाप्रभुर सात। यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, हिन काले व्याघ्र तथा अयल पंच सात, पांच और सात, पांच सात व्याघ्र, एक नहीं, पांच सात वो शेर, वो एक साथ आ गए चैतन्य महाप्रभु के निकट। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो वो निकट आ गए, पांच सात व्याघ्र, और उनके साथ साथ व्याघ्र मृगी मिली, एक तरफ शेर और एक तरफ मृग हिरण, बीच में चैतन्य महाप्रभु। कल्पना कीजिए इस दृश्य को कि क्या यह संभव है, शेर एक तरफ और हिरण दूसरी तरफ और चैतन्य महाप्रभु मध्य में। देखी महाप्रभुर वृंदावन स्मृति हैल, वृंदावन गण वर्णन श्लोक पढ़िल। कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा कि क्या अद्भुत दृश्य है कि शेर और हिरण ये एक साथ आकर मेरे साथ कीर्तन कर रहे हैं, तो इन्हें एक और श्लोक याद आया, श्री वृंदावन धाम की याद आ गई और एक और श्लोक इन्हें याद आया। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन नृमृगादयः मित्रानिवाजिता वास द्रुतरुट तर्शनादिकम्। इस सुंदर श्लोक में वृंदावन धाम की महिमा बताई गई है कि श्री वृंदावन धाम में वो ऐसा धाम है, ऐसा सच्चिदानंद धाम है श्री वृंदावन धाम, कि जहां पर कोई भूख प्यास लगती नहीं किसी को, है ना? जैसे आज नहीं लग रही ना, जैसे ही हम कीर्तन और कथा बंद करते हैं तो तुरंत भूख प्यास याद आती है, है ना? तो इसलिए यदि आज आपको भूख प्यास से बचना है तो क्या करना होगा, सारे दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान के इस हरि नाम में अपने आप को निमग्न कर दो तो भूख प्यास कोई सताएगी नहीं। जैसे कि यहाँ पर भगवान याद कर रहे हैं कि वृंदावन धाम वो धाम है जहाँ पर भूख प्यास क्रोध किसी को सताता नहीं, और विशेष गुण वृंदावन धाम का ये है कि वहां पर कोई एक दूसरे से बैर नहीं रखता। दुर्वैरा सहसान न मृगादय, वहां पर किसी को किसी के प्रति कोई बैर नहीं, और स्वाभाविक मैत्री है वहां पर श्री वृंदावन धाम में। जैसे कि इस भौतिक संसार में इस कलयुग में सभी के बीच स्वाभाविक कलह है ना, स्वाभाविक क्लेश है हम सब के बीच में, इसका ठीक विपरीत वृंदावन धाम में स्वाभाविक मैत्री है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर देख रहे हैं कि स्वाभाविक मैत्री कैसी है कि शेर और हिरण वो एक साथ आकर नृत्य कर रहे हैं कीर्तन में। जैसे बरसाना में एक वहां पर बाबा जी हुए, और ये बाबा जी इनके पालतू जानवर था शेर। सोचिए इनका एक पालतू जानवर था शेर जो कि इनके लिए मधुकरी करता था, और वो भी मधुकरी किसकी, ब्रज रोटी की। ऐसा नहीं कि वहां के कोई प्राणियों को मार के और फिर वो लेकर आता था इनके लिए, नहीं, वो जाता था एक उसके गले में एक छोटा सा थैला अटकाया हुआ था, तो गले में अटका हुआ थैले को लेकर घरों के सामने घरों के सामने घर को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे, केवल अपना थोड़ा सा मुंह खोल के थोड़ी सी आवाज निकालता है, जमाई भी लेता तो अपने आप सभी चौकन्ना हो जाते हैं अंदर। और सोचिए कि यदि कोई शेर मधुकरी करने जाए तो मधुकरी में तो जो बची हुई रोटी है वो बांटते हैं ना लोग, घर में बची हुई रोटी देते हैं, परंतु ये शेर जब मधुकरी करने जाता था तो घर में वो जितना भी कुछ पका हुआ सब कुछ दे देते थे, नहीं तो जानते थे कि ये नहीं तो फिर ये हमें ले जाएगा। तो ये बरसाना धाम में, सोचिए कलयुग में ये सारी घटनाएं हुई है कि शेर इस प्रकार से वो, और ये तो हम बहुत वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। श्याम सुंदर प्रभु जो कि श्रील प्रभुपाद के निजी सेवक शिष्य जो थे जो हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के जाने के पश्चात वो अमेरिका में रह रहे थे, तो जहां पर रह रहे थे उन्होंने एक शेर को पाला था। अमेरिका में वो न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ी इमारत में एक फ्लैट में रहते, अपने फ्लैट में एक शेर को पाल रखा। तो वो शेर एक बार ऐसे ही खिड़की से कूदकर सड़क पर आ गया। न्यूयॉर्क सिटी में शेर सड़क पर, सारा ट्रैफिक जैम वहां पर से खुल गया और सड़क पूरा खाली, और पुलिस की अलार्म, फायर अलार्म, सब जगह पर अलार्म बजने लगी। तो श्याम सुंदर प्रभु उठे कि अचानक कुछ कोई आग लगी कहीं पर, क्या हो रहा है? तो पता लगा कि वो जो शेर को पाले हुए थे वो शेर कूद गया नीचे। तब सबको पता लगा कि यहां पर कोई शेर पाल रहा। तो ये घटना जब राधानाथ महाराज ने सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि भाई जिस व्यक्ति ने इतने वर्ष एक शेर के साथ संग किया है श्रील प्रभुपाद जैसे, तो वो श्रील प्रभुपाद के जाने के पश्चात बिना शेर के नहीं रह सकेगा। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और एक साथ आकर कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु या बे बलील, कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचीते लागी। कि अब तक तो शेर और हाथी वो नाच रहे थे प्रेम में और हरिनाम संकीर्तन में, अब मृग को लगा दिया, अब ये मृग नाचने लगे कृष्ण कृष्ण कहते हुए। ये मृग ये नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो उच्च स्वर में संकीर्तन आ रहा था, तो ये मृग भी श्री चैतन्य महाप्रभु के ही तरह उच्च स्वर में जोर से संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचे कुंडे व्याघ्र गण मृग गण संगे बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। कि बलभद्र भट्टाचार्य ये सब कुछ देखते हुए वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और सबसे ज्यादा आश्चर्य बलभद्र भट्टाचार्य को कब हुआ? अब तक तो बलभद्र भट्टाचार्य ने क्या क्या देखा कि मृग हाथी, वो भी मदमत्त हाथी, व्याघ्र, ये सब अपने अपने तरीके से नाचते हुए नृत्य कर रहे। और अब ये पहला आश्चर्य कि ये प्राणी हरिनाम में नृत्य कर रहे हैं, ये सबसे पहला आश्चर्य बलभद्र भट्टाचार्य का। दूसरा आश्चर्य कि ये नाचने लगे, केवल कीर्तन नहीं कर रहे बल्कि नाच रहे हैं, और वो भी प्रेमावेश, प्रेम के आवेश में। ये दूसरा आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य कि अब ये एक साथ आए, ऐसा नहीं कि हिरण वो शेर से डरे हुए दूर कहीं पर नृत्य कर रहे थे कि शेर को देखते हुए कि उसे 100 फीट दूर नृत्य करेंगे, ऐसा नहीं कि हिरण वो अपने ग्रुप को लेकर सर्कल बनाकर वो 100 फीट दूर नृत्य कर रहे थे और हाथी वो अपना सर्कल अलग बनाकर नृत्य कर रहे थे और शेर वो अपना सर्कल बनाकर नृत्य कर रहे, नहीं। ये तीसरा आश्चर्य बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा कि ये सभी, जैसे हम लोग वो सर्कल बनाते हैं ना हाथ पकड़कर, तो क्या देखा बलभद्र भट्टाचार्य ने कि शेर हिरण का हाथ पकड़े है, एक तरफ हिरण एक तरफ हाथी। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने ये देखा कि इस प्रकार का कीर्तन, इस प्रकार का नृत्य आज तक कभी बलभद्र भट्टाचार्य ने कल्पना भी नहीं की, देखना तो दूर की बात है, कल्पना भी नहीं की। तो यहां तक इनका आश्चर्य पहुंच गया था। अब सबसे बड़ा आश्चर्य बलभद्र भट्टाचार्य को क्या हुआ? व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन, मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन। अब ये बलभद्र भट्टाचार्य विश्वास नहीं कर पाए कि व्याघ्र और मृग वो आलिंगन किए, करे आलिंगन, व्याघ्र और मृग ने आलिंगन किया। कैसे करेंगे वो आलिंगन, कल्पना कीजिए। मुखे मुख दिया और अपने दोनों के मुख वो पास में लाकर चुंबन करने लगे। सोचिए कि जब व्याघ्र किसी हिरण का चुंबन करता है तो वो किस तरीके से करेगा, वो होठों से नहीं करता, दांतों से करता है। तो सोचिए कि व्याघ्र एक शेर, वो शेर ने अपनी क्रूरता छोड़ दी और जो मृग है, जो हिरण है, उसने अपना भय छोड़ दिया। और ये संभव है केवल उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहां पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं कि हमारे अंदर भी कई बार शेर की तरह क्रूरता होती है और हमारे अंदर भी हिरण की तरह भय या डर होता है। तो शेर की क्रूरता और हिरण के समान भय, परंतु यदि हम हरिनाम को अपने मध्य में रखेंगे, जैसे इन्होंने आलिंगन करते हुए मुखे मुख दिया करे चुम्बन, क्योंकि हरिनाम को मध्य में रखा इन्होंने, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि यदि हमें इस कलह प्रधान युग में कलह क्लेश से मुक्ति चाहिए तो हमें एकत्रित होना है, और एकत्रित होकर हमें क्या करना है, चुंबन नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम को अपने मध्य में रखना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हरि बोलो बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित सेई ध्वनि सुनी। बलभद्र भट्टाचार्य का ये आश्चर्य केवल ये अंतिम आश्चर्य नहीं था, कितने आश्चर्य देखे? चार। एक तो व्याघ्र वो हरिनाम ले रहे हैं, ये सबसे पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य कि वो नाचते हुए हरिनाम ले रहे हैं। तीसरा आश्चर्य प्रेमावेश में नाचते हुए हरिनाम ले रहे हैं। चौथा आश्चर्य कि वो मृग और इनके साथ आलिंगन करते हुए आश्चर्य ले रहे हैं। पांचवा आश्चर्य आलिंगन करते हुए चुम्बन ले रहे हैं वो एक दूसरे का, ये छठा आश्चर्य। अब सातवां आश्चर्य बलभद्र भट्टाचार्य क्या देख रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल हरि बोल कह रहे हैं सबको, हरि बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, उच्च ध्वनि में वो बोल रहे हैं सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने के लिए, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा कि ये प्राणी तो दूर की बात, वृक्ष लता उस झारखंड जंगल के वृक्ष और लताएं, अब वृक्ष और लताओं के विषय में कहा गया है कि जो वृक्ष हैं वो पुल्लिंग हैं और लताएं हैं स्त्रीलिंग, तो वृक्ष और लता वो हस्बैंड वाइफ बताया गया है उन्हें। इसलिए जो लता होती है वो हर समय वृक्ष को चिपकी हुई रहती है ना, वो हर समय वृक्ष के सहारे रहती है, तो वृक्ष के सहारे ही लता आगे उगती है बढ़ती है। जैसे कि कोई पत्नी पति के सहारे ही प्रगति करती है, तो ये वृक्ष और लता यदि ये मिस्टर मिसेज हो गए तो चैतन्य महाप्रभु इनका उदाहरण दे रहे हैं हम सबको कि यदि इस भौतिक संसार में यदि कोई वृक्ष की योनि में जो ये दो हैं गृहस्थ आश्रम में वृक्ष और लता, यदि ये प्रफुल्लित होकर सुन रहे हैं, क्योंकि ये गा तो सकते नहीं, सोचिए वृक्ष और लता गाएंगे कैसे, तो इनका शरीर इतना सीमित कि ये गा कैसे सकते हैं, तो इसलिए वृक्ष लता प्रफुल्लित से ही ध्वनि सुनी, केवल सुनकर ही ये प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो वृक्ष और लता ये शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम अपने मुख से उच्चारण भी नहीं यदि कर पा सकते तो केवल यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुने तो केवल सुनने मात्र से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। तो सोचिए यदि हमारे अंदर ये शक्ति दी गई है कि हम सुनने के बाद बोल भी सकते हैं उसका कीर्तन भी कर सकते हैं, तो फिर क्या दशा हमारी होनी चाहिए और क्या दशा होती है हमारी, कैसी दशा होनी चाहिए और कैसी दशा होती है कि यहां पर हमें शर्म आनी चाहिए कि वृक्ष और लता ये भी प्रफुल्लित हो रहे हैं इस भगवान के मधुर ध्वनि को सुनते हुए। तो क्या हम प्रफुल्लित होते हैं जब कृष्ण कथा सुनने का अवसर आता है, तो क्या प्रफुल्लित होते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित होता है कृष्ण कथा गौर कथा, तो ये आश्चर्य बलभद्र भट्टाचार्य देख रहे हैं कि वो अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहे कि भाई चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस हद तक पहुंच पाएगी, ये वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब अपने मन में झारखंड के उस जंगल की छवि को देखते हुए वो कहते हैं, झारखंड सावर जंगम आछे यत कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमेते उन्मत, कि उस झारखंड के जंगल में अब कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी स्थावर जंगम, कोई भी व्यक्ति वस्तु ऐसा नहीं बचा था जो हरिनाम नहीं ले रहा था। कि यहां पर वृक्ष और लता प्रफुल्लित होते हुए वो कूद रहे थे, प्रफुल्लित होते हुए। सोचिए लताएं कैसे कूदेंगी वृक्ष के ऊपर, और वृक्ष तो वो तो फिक्स्ड हैं, तो वो हिलने लगे, उनके जो ऊपर की टहनियां हैं वो हिलने लगी, उनके जो पत्ते हैं वो हिलने लगे, और कई पत्ते गिरकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर आने लगे। और ये जब हो रहा है तो व्याघ्र, मृग, हस्ती, हाथी, ये सब आकर सब जगह पर, यहां तक कि सांप, बिच्छू, ऐसे जहरीले प्राणी भी वो भी आलिंगन कर रहे हैं। सांप बिच्छू का आलिंगन कर रहा है, बिच्छू सांप का आलिंगन कर रहा है, और ये दोनों खरगोश का आलिंगन कर रहे हैं। तो वहां के मयूर, खरगोश, बिच्छू, सांप, सर्प, हाथी और क्या, बलभद्र भट्टाचार्य वो भी थे, तो ये सब उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन लेने। तो कल्पना कीजिए कि वो हरिनाम संकीर्तन कैसा दिख रहा होगा, दिखने में कैसा दिख रहा होगा। कई बार जब नए लोग आते हैं मंदिर में और जब देखते हैं कि सभी कूद रहे हैं इतना ऊपर, कहां कहां जा रहे हैं कूदते हुए, और इतनी जोर, जैसे हमारे बंबई का जो मंदिर है वो उसका फर्श लकड़ी का है, तो अभी तो उसके नीचे बहुत कुछ लगा दिया गया, रीइंफोर्समेंट किया गया। पहले जब कोई नया आता तो देखता कि वो पूरा वो ऊपर नीचे होता, वो लकड़ी का फर्श पूरा ऐसा हिलता था वो, और वो फर्श हिलता और दीवार थोड़ी थोड़ी हिलती, और नीचे क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर है तो नीचे यदि कोई होता तो कई बार गीता कोर्स हम लोग लेते थे शाम के समय, तो यदि ऊपर कोई गौर आरती शुरू हो जाती 7:30 तक, तो धीरे धीरे भक्त जब नाचना शुरू करते हैं तो पहले गाड़ी फर्स्ट गियर में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर बाद में जैसे ही अंतिम कीर्तन शुरू होता है तो जोर जोर से वो लोग नाचना शुरू करते। तो गीता कोर्स वाले यहां वहां देखते थे कि ये 6 दिन का कोर्स बता रहे हैं, आज ही पूरा होने वाला है। इतनी जोर जोर से आवाज होती थी उसकी, तो लकड़ी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नए लोग कोई आते थे वो लोग चिंता करते, अरे ये बिल्डिंग गिरने वाली है शायद। तो कई लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोग बाहर आकर खड़े हो जाते थे कि उन्हें लगता था कि क्या ये भक्तों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, क्या भूकंप आया है, क्या हो रहा है। तो सोचिए कि ये दृश्य कोई व्यक्ति देखे, शेर, हाथी, सर्प, मृग, बिच्छू, खरगोश और ये सारे प्राणी एक साथ होकर ये प्रेमावेश में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी इस कल्पना को नहीं कल्पना कर सक रहे थे, इनकी कल्पना से बाहर था ये सब कुछ। यही ग्रामत दियायन यहाँ करें स्थिति से सब ग्रामेर लोके रहय प्रेम भक्ति। और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी ग्राम जिस किसी गांव प्रांत से गुजरते तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम आवेश को देखकर हरेक व्यक्ति अब हरिनाम संकीर्तन में लग जाता, अपना सब कार्य छोड़कर हरेक व्यक्ति उस गांव का हरेक गांव वाला उस श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहा है। चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर में हाथ ऊपर कर जो हरिनाम कर रहे हैं तो सभी देखने मात्र से वो भी अपना हाथ ऊपर कर देते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो भी हरिनाम संकीर्तन केवल चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से उनके हाथ ऊपर उठ जाते। कई बार हमें बोला जाता है हाथ ऊपर करो, उसके बाद भी हाथ ऊपर नहीं होते। हमारे मंदिर के एक भक्त वो बता रहे थे कि वो जब पहली बार मंदिर आए और उन्होंने देखा कि सभी लोग एक कूद रहे ऊपर नीचे और हाथ ऊपर किए, तो आते सो उन्होंने सबसे पहला व्रत लिया कि मैं कभी हाथ ऊपर नहीं करूंगा, ये मैं कभी नृत्य नहीं करूंगा, ये प्रण था उनका। और जैसे उन्होंने प्रण लिया तो जो कीर्तन कर रहे थे उन्होंने कीर्तन के बीच में कहा कि जो हाथ ऊपर नहीं करता, और ये हाथ ऊपर नहीं कर रहे, जो हाथ ऊपर नहीं करता उसके सारे पाप उसके कंधों पर बने रहेंगे जीवन भर। और जो हाथ ऊपर कर कर कीर्तन करेगा उसके कंधों पर जो भार है उसके पापों का, वो सारे पापों की गठरी हाथ ऊपर करने के वजह से नीचे गिर जाएगी। तो वो देखने लगे और बाकियों की तरफ देख रहे हैं, सभी अपना हाथ ऊपर किए हैं और सभी उनकी तरफ देख रहे हैं, सभी हाथ ऊपर किए हैं सभी उनकी तरफ देख रहे हैं और उनके कंधों की तरफ देख रहे हैं। पाप की गठरी देखो, इधर एक है, इधर दो, तीन, चार, करो करो हाथ ऊपर करो। तो जैसे ही वो सब भक्त उनको देख रहे हैं सभी हाथ ऊपर किए, तो इन्होंने भी अपना हाथ ऊपर किया, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब से इनका हाथ ऊपर ही है। तो यदि हमें भी हमारे पापों की गठरी हमारे कंधों से नीचे फेंकनी है तो हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जैसे ही हम हाथ नीचे करते हैं गठरी वापस ऊपर आ जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आपके ऑफिस में भी ऐसे जाओ, ऑफिस ऑफिस में बॉस के सामने गुड मॉर्निंग बॉस। तो जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखता तो केवल देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु किसे प्रेरित भी इस प्रकार से नहीं कर रहे थे हरिनाम लेने के लिए, अपने आप वो हरिनाम लेना शुरू कर देता। और बहुत ही सुंदर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसका परिणाम क्या हो रहा था। केह यदि तान्र मुखे सुने कृष्ण नाम, तान्र मुखे आन सुने तान्र मुखे आन, सबे कृष्ण हरि बलि नाचे कांदे हासे, परंपराय वैष्णव हैल सर्व देशे। कि यहां पर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनता इस हरिनाम को सुनता वो हरिनाम लेना शुरू करता। पहले वो सुनता फिर वो लेता, और उसके मुख से निकला हुआ हरिनाम तीसरा व्यक्ति सुनता, और वो क्या करता, वो कीर्तन करने लगता, और उसके मुख से निकला हुआ कीर्तन चौथा व्यक्ति सुनता, और वो क्या करता, वो कीर्तन करना शुरू करता, उसके मुख से निकला हुआ हरिनाम पांचवा व्यक्ति सुनता और क्या करता। यदि हम ऐसे ही वर्णन करते जाएं तो शाम तक कितनी गिनती हो जाएगी। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसे कहते हैं परंपरा। परंपरा या वैष्णव हैल सर्व देशे, सभी देशों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल इसी परंपरा को फैलाया। कि श्री चैतन्य महाप्रभु किसी को स्पर्श कर देते तो उसे स्पर्श कर देते तो वो हरिनाम में पागल हो जाता और वो पागलों की तरह हाथ ऊपर करके नृत्य करने लगता। और जब कोई व्यक्ति सोचता कि इसे मैं बचाऊं, ये पागल हो गया है, कुछ समय पहले ठीक था, कल तक ठीक था, ये क्या हो गया, अचानक हाथ ऊपर करके पागलों की तरह नृत्य कर रहा है, तो कोई व्यक्ति ये जो तथा कथित पागलपन रोकने के लिए उसका जाता और उसके हाथ नीचे करने के लिए उसे स्पर्श करता तो वो भी दोनों मिलकर हाथ ऊपर कर नृत्य कर हरिनाम करना शुरू करते। तो तीसरा गांव वाला आता, वो देखता है ये दोनों को क्या हुआ, तो वो जब आता वो स्पर्श करता तो वो भी शुरू हो जाता, अब तीनों शुरू हो गए। ऐसे पूरा गांव आ जाता और पूरा गांव जैसे कि करंट पास होता है वैसे सभी के अंदर ये हरिनाम का करंट चैतन्य महाप्रभु पास कर रहे थे और वो पावर हाउस। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पावर हाउस से जो करंट पास किया उसका लोड शेडिंग अभी तक नहीं हुआ है, अब तक बिजली गई नहीं है, कि अब तक जो भी उस परंपरा के संपर्क में आ रहा है वो पागल होकर हाथ ऊपर कर क्या कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य इस श्लोक पर लिखा है कि यदि हमें परखना है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं या नहीं, तो हमें कैसे परखना है, सबसे पहले तो क्या हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से स्पर्श हुए हैं कि नहीं, और उसका लक्षण क्या है, हरिनाम संकीर्तन इस मदमत्त तरीके से हम ले रहे हैं कि नहीं, और एक और लक्षण है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के संपर्क में हैं कि नहीं, कि क्या जो हमारे संपर्क में आ रहा है क्या वो हरिनाम ले रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो क्या हम हरिनाम ले रहे हैं कि नहीं, और जो हमारे संपर्क में आ रहा है क्या वो हरिनाम ले रहा है कि नहीं। जैसे कि बिजली का करंट जो होता है, वो बिजली का करंट वो पास होता है तारों के द्वारा, है ना, और वो तार कौन सी धातु का बना होता है, तांबे का, है ना, तांबे का बना होता है ना। अब यदि कोई तार प्लास्टिक का बना है तो क्या प्लास्टिक के तार से बिजली का करंट पास होगा? नहीं। यदि आपको इस बात का ज्ञान है कि तांबे से भी ज्यादा शक्तिशाली बिजली के करंट को पास करने के लिए कौन सा धातु है जानते हैं? सोना, गोल्ड। कि यदि वो तार सोने का बना हुआ हो तो उसमें बिजली का करंट बिना रुके बिना किसी अवरोध के पास होगा। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बेस्ट कंडक्टर, है ना, होता ना, बैड कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर। तो हमें भी कम से कम ये देखना है कि हमारे थ्रू वो करंट पास होता रहे। तो कम से कम तांबा तो बने हम। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण के, सोने के वर्ण के, कि उनका बेस्ट कंडक्टर था इस करंट को पास करने के लिए। तो यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उतने अच्छे कंडक्टर तो नहीं बन सकते, तो कम से कम हम वो बैड कंडक्टर तो नहीं बने, या बस कंडक्टर तो नहीं बने। तो इसे कहते हैं परंपरा, कि यदि हमारे वजह से कोई व्यक्ति हरिनाम या चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं ले पा रहा तो हमें थोड़ा अलग हटकर उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के उस कंडक्टर से संपर्क में लाना चाहिए। यदि हम नहीं कंडक्ट कर सकते तो उस कंडक्टर के संपर्क में लाना चाहिए जो कि उसे उस प्रकार का हरिनाम दे सकेगा। तो परंपरा के दो लक्षण, क्या हमारे अंदर वो करंट पास हुआ है कि नहीं, ये लक्षण, क्या हमारे द्वारा दूसरे के अंदर वो करंट पास हो रहा है कि नहीं, ये दूसरा लक्षण, तब हम कह पाएंगे कि हम परंपरा में हैं। श्रील प्रभुपाद उस प्रवचन में जो 12 महाजन हैं इनके विषय में कह रहे थे, कि श्रीमद् भागवत में जो 12 महाजन भीष्म, ध्रुव, प्रह्लाद, स्वयंभुव, मनु, जनक, इन सब के विषय में जो श्लोक में कहा गया है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये हैं 12 महाजन और हमें इन महाजनों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को सिद्ध करना है। तो ऑडियंस में बैठे हुए उनके एक शिष्य ने कहा, और श्रील प्रभुपाद आप 13वां महाजन हैं, आप 13वें महाजन हैं। तो सभी कहे कि वाह क्या बोला। श्रील प्रभुपाद ने कहा और तुम 14वें महाजन बनो, एंड यू बिकम द 14th महाजन, विच मीन्स श्रील प्रभुपाद ने आशीर्वाद दे दिया कि जितने भी श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आएंगे, क्योंकि वो महाजनों के संपर्क में हैं, तो उनके वजह से जो भी उनके संपर्क में आएगा वो भी महाजन की भूमिका निभा सकता है। अमर आज्ञा गुरु होइया तार ए देश, जारे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि मैं तुम्हें पूर्ण शक्ति दे रहा हूं कि तुम गुरु बनो। तो कोई व्यक्ति कहेगा भाई गुरु गुरु बनूं मैं? चैतन्य महाप्रभु, हम सब जो यहां पर बैठे हुए हैं, हम सबको चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनने के लिए कहा है, आपको 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 सबको क्या करने के लिए कहा है, गुरु बनो। आप लोग तैयार हैं? तो कोई पूछे कि भाई गुरु कैसे बने? जारे देखो तारे कहो, जिस किसी को भी देखो उसे कृष्ण उपदेश दो। इसलिए उस कीर्तन में गाया हुआ है, भजो कृष्ण भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरंग भजे से हया मार प्राण रे, जे जना गौरंग भजे से हया मार प्राण रे, भज गौरांग कह गौरांग ले गौरांग नाम रे, गौरांग भजे मर प्राण रे, रंग भजे से मर प्राण रे, कृष्ण 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 पाहि नाम, राम राघव रक्षा, राम राघव राम राघव रक्षा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बलि नाचे कांदे हासे, परंपराय वैष्णव हैल सर्व देशे। किस प्रकार से इस परंपरा के संपर्क में आकर अब सभी सर्व देश सभी देशों में वैष्णव ही वैष्णव दिखने लगे, कि मानो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ करती क्या है, जहां कहीं से भी वो बाढ़ का पानी गुजरता है उसे वो बाढ़ का पानी गीला कर देता। तो समझ में आ जाता है कि यहां से बाढ़ का पानी गया है। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जहां कहीं से भी गुजर रहे थे, यदि वो झारखंड का जंगल हो, यदि वो कोई गांव, कोई प्रांत, कोई भी कोई शहर, चैतन्य महाप्रभु गुजरते हुए समझ में आ जाता था कि चैतन्य महाप्रभु यहां से गुजरे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गुजरने के पश्चात अब उस गांव में और कुछ नहीं होता, सभी एकत्रित होकर केवल हरिनाम किया करते अब उस गांव में। और ऐसा नहीं कि केवल कुछ समय के लिए, वो नित्य काल तक हरिनाम करते हुए भगवत धाम पहुंच गए सभी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रही जब वो निकल पड़े श्री वृंदावन धाम का दर्शन करने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अब वो आगे बढ़ते हैं, परंतु हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे की जो लीला है वो अब एक दूसरा प्रसंग शुरू होने वाला है। जब चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हुए गौड़भंग उत्कल दक्षिण देशे गिया, लोकेर निस्तार कैला आपने भ्रमिया। बढ़ते बढ़ते गौड़भंग उत्कल दक्षिण इन सब देशों से भरते हुए आगे चैतन्य महाप्रभु सभी को निस्तारते हुए, कृष्ण भावना भावित बनाते हुए चैतन्य महाप्रभु पहुंचे काशी। काशी और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या किया, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सत्र में। तो एक भजन हम गाना चाहेंगे, तो सबको आप पुस्तकें बांट दीजिए। बहुत ही विशेष भजन है ये, और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सब आज का जो पूरा दिन है आप इस भजन को अपनी चेतना में रखिए। और आज के दिन ये भजन बहुत ही महत्व रखता है हम सब के लिए। 176 पेज। इस भजन में, इसका अनुवाद कोई पढ़ सकता है? इसका अनुवाद आप ध्यान से सुनिए, और यही हमारी आशा है, प्रार्थना है कि आज का पूरा दिन ये जो भजन का अनुवाद है इस पर गौर करते हुए आज का पूरा दिन ये सुंदर महोत्सव को आप मनाइए। इसका शीर्षक है, यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो किमो ने धरिताम दे। कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन अवतरित नहीं हुए होते तो हमारा क्या हुआ होता। और इस भजन को विस्तार से चर्चा हम शाम को करेंगे, आज अभी गाएंगे हम, और पूरे दिन भर आपको इस भजन का जो अनुवाद है इसका अनुवाद बोलिए। तो मुझे जितनी मराठी आती है मैं बोलता हूं। या कलयुगा मध्ये जर श्री गौरांग महाप्रभु युगावतार म्हणून अवतरित झाले नसते तर आमचे काय झाले असते। शायद और किसी को बोलना अच्छा होगा। ये बहुत ही गंभीर भजन है।
या कलियुगामध्ये जर श्री गौरांग महाप्रभु युगावतार म्हणून अवतरित झाले नसते तर आमचे काय झाले असते। या संपूर्ण जगतात सर्वोच्च प्रेम रसाच्या अंतिम सीमा असलेल्या श्रीमती राधाराणीच्या महिमांबद्दल कोण जाणू शकला असता। व्रजधामातील गोपींच्या पदचिन्हांचे अनुगमन करीत दिव्य भावभक्ती सादर करण्याची शक्ती कोणाकडे असते। खरेच वृंदादेवीच्या मधुर वनांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी व्रजगोपींची चतुर निपुणता अतिशय आवश्यक आहे। कृपा करून आपण पुन्हा पुन्हा श्री गौरांग महाप्रभूंच्या गुणांचे गुणगान करा। केवळ आपले अंतकरण निर्मळ राखा। या भवसागरातील एकाही व्यक्तीने श्री गौरांग महाप्रभू इतके उदार दयाळू व्यक्तिमत्व पाहिलेले नाही। जरी मी श्री गौरांग महाप्रभूंच्या पवित्र नामाचा जप करीत असलो तरी अजून माझ्या अंतकरणाला पाझर फुटला नाही। असे असताना मी कसा काय या देहाचे ओझे सांभाळीत आहे। सृष्टीच्या निर्मात्याने कशा प्रकारे या वासुघोषाच्या देहाची रचना केली आहे जिथे हृदयाच्या जागी त्यांनी पाषाण ठेवला आहे।
यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरी तांदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरी तांदे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुर सार मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुर सार
गजायुवती भगर भक्ति शकति होइत काज। ब्रज युवती भगर भक्ति शक्ति होइत काज। यदि गौर न होइत तबे की होइत के मने धरितांबे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। गाओ गाओ पुनः गौरंगे रघुण सरल करी अमान। गाओ गाओ पुनः गौरंगे रघुण सरल करी अमान। भव सागर मन दया न देखिए कजान। भव सागर मन दया न देखिए कजान। यदि गौर न होइत तबे की होइत के मने धरितांबे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। आमी गौरंग बलिया नागिनु गलिया के मान धरिनु दे। आमी गौरंग बोलिया नागिनु गलिया के मान धरिनु दे। पाषाण दिया के मने गड़िया छे। वासु रहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे। यदि गौर न होइत तबे की होइत के मने धरितांबे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय चैतन्यनिताय चैतन्यनिताय जय चैतन्यनिताय प्रभुपा जय जय प्रभुपा प्रभुपा जय जय प्रभुपा हरि बोल सगौर हरि बोल नी सगौर हरि बोल हरि बोल सगौर हरि बोल नी सगौर हरि बोल हरि बोल सगौर हरि बोल श्री गौरनिताय की महाप्रभु की श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी मिताली गौर प्रेमानंदी मिताली गौर प्रेमानंदी
बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा।